आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और हम पढ़ रहे थे आपकी पुस्तक का पाठ 4 जिसका नाम है एही ठैया झुल्ली हैरानी हो रामा। तो शिव प्रसाद सिंह रुद्र जी का ये लिखा हुआ एक लेख है जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि रुद्र जी ने लिखा है टुन्नू एक 17-18 वर्ष का बालक है और एक दुलारी बाई नाम की महिला है। दोनों ही कजली गायक हैं। कजली एक लोकगीत होता है, दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में वो गाते हैं और जब उनकी पहली मुलाकात होती है तभी से उनके मन में एक दूसरे के प्रति सहज आकर्षण पैदा हो जाता है। ऐसे ही उनकी मुलाकातें बढ़ती रहती हैं लेकिन जो दुलारी बाई होती है वो टुन्नू को कभी स्वीकार नहीं करती, उसकी बात को हमेशा मतलब मजाक में ले लेती है या उसे बालपन का एक आकर्षण समझ लेती है। लेकिन धीरे धीरे जब उसे समझ में आता है कि टुन्नू का आकर्षण शरीर से ना जुड़ा होकर बल्कि उसकी आत्मा से जुड़ा है तो उसे भी फिर उसके प्रति करुणा आ जाती है, एक दया आ जाती है। लेकिन जिस दिन उसे ये बात समझ में आती है तब तक उसके पास खबर आती है कि टुन्नू जो है वो टाउन हॉल में जाके उसकी मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पे लेखक ने यह भी समझाया है कि जो व्यक्तिगत प्रेम होता है उससे ऊंचा होता है देश प्रेम, ठीक है। और जो हम पढ़ रहे थे कि जो संवाददाता है वो एक खबर छाप के लाया था तो उसपे उसके जो बड़े अफसर हैं, प्रधान संवाददाता हैं, संपादक हैं, वो गुस्सा हो रहे हैं कि तुम कैसी खबर छाप के लाए, क्योंकि उस समय क्या था, अंग्रेजों का शासन था तो आप इधर का कुछ नहीं लिख सकते थे, है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि खबर में आखिर क्या लिखा था। पेज नंबर 39 पर देखिए, लास्ट पैराग्राफ से हमें पढ़ना था, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। झेप भरी मुद्रा में शर्मा जी ने कहा और फिर धीरे धीरे वह रिपोर्ट पढ़ने लगे। कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही, यहां तक कि खोमचे वालों ने भी नगर में फेरी नहीं लगाई। सवेरे से ही जुलूसों का निकलना जारी हो गया जो जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता जाता था। एक ही जुलूस के साथ नगर का प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। उक्त जुलूस जब टाउन हॉल पहुंचकर विघटित हो गया तो पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नू को जा पकड़ा और उसे गालियां दी। गाली देने का प्रतिवाद करने पर जमादार ने उसे बूट की ठोकर मारी, चोट पसली में लगी, वह तिलमिलाकर जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से एक चुल्लू खून निकल पड़ा। पास ही गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने टुन्नू को उठाकर गाड़ी में लाद लिया। लोगों से कहा गया कि अस्पताल को ले जा रहे हैं परंतु हमारे संवाददाता ने गाड़ी का पीछा करके पता लगाया है कि वास्तव में टुन्नू मर गया। रात के 8 बजे टुन्नू का शव वरुणा में प्रवाहित किए जाते हुए हमारे संवाददाता ने देखा है। तो क्या बता रहे हैं, जब वो रिपोर्ट पढ़ते हैं शर्मा जी तो उसमें लिखा होता है कि 6 अप्रैल को एक हड़ताल की गई है, है ना, भारतवासियों ने एक हड़ताल की है क्योंकि यहाँ के नेताओं ने उनसे गुजारिश की थी कि हमें हड़ताल करनी है, जुलूस निकालना है अंग्रेजी शासन के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ। तो सभी लोगों ने उसमें सहायता दी, योगदान दिया अपना, किसी ने भी जैसे जो छोटे छोटे फेरियां लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, इन लोगों ने भी अपनी फेरी नहीं लगाई, किसी ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ जुलूस निकले ताकि विदेशी कपड़ों को जलाया जा सके और हम स्वदेशी चीजों का ही इस्तेमाल करेंगे, इस बात का संदेश फैलाया जा सके। तो वहां ऐसे जो कई जुलूस निकल रहे थे उनमें से एक जुलूस में टुन्नू भी था जो कि शहर का बहुत ही प्रसिद्ध कजली गायक था, है ना। और पता चला जब वो टाउन हॉल पहुंचा और जुलूस विघटित हो गया यानी इधर उधर बिखर गया तो पुलिस का जो जमादार था अली सगीर उसने टुन्नू को पकड़ा और गालियां दी। जब उनका बीच प्रतिवाद होने लगा यानी झगड़े होने लगे, यहाँ दोनों तरफ से गालियां होने लगी, तो जो जब अली सगीर था उसने बूट से उसे मारा, बूट यानी जो वो बड़े बड़े जूते पहनते हैं ना पुलिस वाले, उससे मारा और टुन्नू जमीन पे गिर पड़ा, उसके मुंह से खून भी निकलने लगा। तो जो गोरे सैनिकों की गाड़ी थी वो उसे अपने साथ डालकर ले जाने लगे और कह दिया लोगों से कि अस्पताल ले जा रहे हैं, जबकि जो संवाददाता रिपोर्ट लिख रहे थे उन्होंने गाड़ी का पीछा करके क्या पता लगाया कि वास्तव में टुन्नू को अस्पताल नहीं ले जा रहे थे, टुन्नू तो पहले ही मर गया था। और जब अंधेरा हो गया रात के 8 बजे तो समय देखकर उन लोगों ने टुन्नू का जो शव था उसकी जो लाश थी उसे नदी में बहा दिया, ठीक है। आगे देखिए, इस सिलसिले में यह भी उल्लेख है कि टुन्नू का दुलारी नामनी गौन हारिन से भी संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में भी, जिसमें जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, दुलारी को नचाया गवाया गया। उसे भी शायद टुन्नू की मृत्यु का संवाद मिल चुका था। वह बहुत उदास थी और उसने खद्दर की एक साधारण धोती मात्र पहन रखी थी। सुना जाता है कि उसे पुलिस जबरदस्ती ले आई थी। वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या की गई थी, परंतु विवश होकर गाने के लिए खड़ा होना पड़ा। कुख्यात जमादार अली सगीर ने मौसमी चीज गाने की फरमाइश की। दुलारी ने फीकी हंसी हंसकर गाना प्रारंभ किया। उसने कुछ अजीब दर्द भरे गले से गाया, एही ठैयां झुलनी हैरानी हो रामा कासो में पूछूं। क्या होता है जब इतनी खबर बताई उन्होंने संवाददाता ने कि टुन्नू मर गया था और उसको फिर नदी में उसकी लाश को बहा दिया, तो उसके आगे वो बताता है कि ऐसा भी उल्लेख है, यानी ऐसा भी बताया जा रहा है कि टुन्नू और एक दुलारी नाम की गौनहारिन, गौनहारिन यानी गाने वाली जो लोकगीत गाती है ना, वो उन महिलाओं को गौनहारिन कहते हैं, तो उस महिला के साथ टुन्नू का संबंध था, यानी कोई रिश्ता था आपस में। और कल जो टाउन हॉल में अमन सभा आयोजित की गई थी तो उसमें दुलारी को नचाया गवाया गया था। क्यों? जबरदस्ती उसको एक दुख देने के लिए कि देखो तुम्हारा जो प्रेमी था वो मर गया है और तुम्हें यहाँ पे गाना पड़ेगा। वो उस जगह पे गाना नहीं चाहती थी जहाँ थोड़ी देर पहले 8 घंटे ही पहले उसके प्रेमी को मार दिया गया, लेकिन पुलिस उसे जबरदस्ती लाती है। तो वो अनमने मन से दुखी होकर जाती तो है, लेकिन सिर्फ एक खद्दर की साधारण साड़ी पहन के। जब वो गाने के लिए खड़ी होती है तो अली सगीर जानबूझ के उससे फरमाइश करता है कि कुछ मौसमी चीज गाए, यानी कुछ मौसम के हिसाब से चीज गाई जाए जो अभी चल रही है गाने में, ऐसी कुछ। तो दुलारी फीकी हंसी हंसती, यानी कि उदास होकर झूठी जो हंसी होती है वो हंसती है और गाना प्रारंभ करती है। और उसके गले में दर्द दिखता है, दुख दिख रहा होता है। क्या गाती है वो? एही ठैयां झुलनी हैरानी हो रामा कासो में पूछूं, यानी इसी स्थान पर मेरी नाक की झुलनी यानी नथनी गिर गई थी, मैं किससे पूछूं। पास ही में कंपनी बाग के फूलों की खुशबू से वायुमंडल आमोदित हो उठा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था जिसे भेद कर दुलारी की स्वर लहरी गूंज उठी, एही ठैयां झुलनी हैरानी हो रामा कासो में पूछूं। क्या कह रहे हैं? पास में जो कंपनी बाग था उसमें फूल जो थे वो इतनी खुशबू बिखेर रहे थे कि पूरे वातावरण में खुशबू ही खुशबू थी, लेकिन चारों ओर एक सन्नाटा था, इतनी शांति थी, उसमें केवल दुलारी के स्वर गूंज रहे थे, दुलारी की आवाज आ रही थी और वो यही गाना गाए पड़ी थी कि मेरी यहाँ पे नथनी गिर गई थी, मैं अब किससे पूछूं। बूट की ठोकर खाकर दोपहर को टुन्नू जिस स्थान पर गिरा था उसी स्थल पर दृष्टि जमाए हुए दुलारी ने दोहराया, एही ठैयां झुलनी हैरानी हो रामा, और फिर चारों ओर उद्भ्रांत दृष्टि घुमाते हुए उसने गाया, कासो में पूछूं। उसके अदर प्रांत पर स्मित की एक शीर्ण रेखा सी खिंची। क्या हुआ? जहां पर टुन्नू जो है वो गिर गया था बूट की यानी जूते की ठोकर खाके, वहां पर वो दृष्टि डालती है यानी अपनी नजर डालती है उसी स्थान पर, उसे पता होता है कि हाँ यही जो मेरा प्रेमी टुन्नू है वो यहीं गिरा था, तो उसी जगह पे देखते हुए वो गाती है कि एही ठैयां झुलनी हैरानी हो रामा, फिर चारों तरफ उद्भ्रांत दृष्टि यानी कि हैरान होकर भ्रमित होकर इधर उधर देखती है कि किससे पूछूं मैं, कौन मुझे इस बात का जवाब देगा। और फिर वो गीत का दूसरा हिस्सा गाती है, सास से पूछूं ननदिया से पूछूं देवरा से पूछत लजानी हो रामा, यानी किससे पूछूं, सास से पूछूं ननद से पूछूं देवरा से पूछूं किससे पूछूं, देवर से पूछने में तो मुझे लाज यानी शर्म आती है। देवरा से पूछत कहते कहते वे बिजली की तरह एकदम घूमी और जमादार अली सगीर की ओर देख उसने लजाने का अभिनय किया। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें छह उठी, या यो कहिए कि वे पानी की कुछ बूंदें भी जो वरुणा में टुन्नू की लाश फेंकने से छिटकी और अब दुलारी की आंखों में प्रकट हुई। वैसा रूप पहले कभी ना दिखाई पड़ा था, आंधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु के गंभीर आविर्भाव में भी नहीं। सत्य है परंतु छप नहीं सकता, संपादक ने कहा। ठीक है, तो आगे उस रिपोर्ट में क्या था कि जब वो ऐसे गा रही थी दुलारी तो सबसे पूछती है कि किससे पूछूं मैं कि यहाँ पे जो मेरी नथनी गिरी थी वो कहाँ गई, सास से पूछूं ननद से पूछूं देवर से पूछूं किससे पूछूं, देवर से पूछने में मुझे शर्म आती है। जब उसने ये बात कही तो वो अली सगीर की तरफ ही देखने लगती है जिसने टुन्नू को ठोकर मारी थी और फिर लजाने का अभिनय करती है यानी शर्माने का नाटक करती है, एक्टिंग करती है झूठ मूठ की, और उसकी आंखों में आंसू देखने लगते हैं। और देखिए अब लेखक ने कितना सुंदर वर्णन किया है, क्या बताते हैं कि केवल आंसू ही नहीं होते हैं, ये वो पानी की बूंदें होती हैं जो जब टुन्नू की लाश को नदी में फेंका गया होगा ना, और जो पानी की बूंदें बाहर छटकी होंगी, अब वो दुलारी की आंखों में दिख रही थी जो पानी की बूंदें बाहर आई थी। और वैसा जो रूप था उसका कभी किसी ने नहीं देखा। दुलारी के आंखों में ये दुख या ये जो भावना थी उसकी वो कभी किसी ने नहीं देखी, लेकिन आज दिखाई पड़ रही थी। ऐसा रूप जो आंधी, समुद्र, मृत्यु किसी भी समय दुलारी ने नहीं दिखाया था, वो आज दिखा रही थी। ये था प्रेम का रूप, व्यक्तिगत प्रेम को दबाकर देश प्रेम को जिताना, उसका रूप है ना। तो जो संपादक है वो क्या कहते हैं, सत्य है परंतु छप नहीं सकता। यानी कहानी सत्य तो है तुम्हारी, लेकिन यह छप नहीं सकता। क्योंकि क्यों नहीं छप सकता था, क्योंकि देश में अंग्रेजों का शासन था और यहाँ के लोगों के प्रति कोई किसी के मन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि यहाँ के लोगों के बारे में सच्चाई को छाप सके। ठीक है, तो अब पेज नंबर 41 पर इसके प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, आइए अब हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, हमारी आजादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा है, इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है। तो अब आप क्या लिखेंगे कि भारत की जो आजादी की लड़ाई हुई उसमें हर वर्ग के लोग ने, हर धर्म के लोगों ने अपना अपना योगदान दिया, जितना वो कर सकते थे उससे सबने बढ़ चढ़ कर ही किया, सबने भाग लिया। लेकिन इस कहानी में लेखक ने टुन्नू और दुलारी जैसे पात्रों के माध्यम से उस वर्ग को उभारने की कोशिश की है जो समाज में हीन या उपेक्षित समझा जाता है। क्यों? जैसे कि जो दुलारी और टुन्नू थे वो कौन थे, कजली गायक थे ना, एक लोकगीत गाते फिरते थे यहाँ से वहां, और टुन्नू ने फिर भी अपने देश की आजादी के लिए जो जुलूस निकल रहे थे उसमें भाग लिया और प्राणों की बाजी लगा दी, यानी जान से वो हाथ भी धो बैठा। इससे उसने क्या सिद्ध किया कि जो वर्ग है वो केवल नाचने गाने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि इनके मन में भी देश के प्रति एक सम्मान है, आदर है, और ये भी आजादी से उतना ही प्यार करते हैं जितना कोई और व्यक्ति। इसी तरह ये तो टुन्नू का प्रसंग हो गया। दुलारी के बारे में भी एक प्रसंग आया है कि जब लोग कपड़े फेंक रहे थे, विदेशी कपड़े जला रहे थे, नाटक कर रहे थे, तो वहां अक्सर सब लोगों के कपड़े वो थे जो फटे हुए थे या पुराने हो गए थे, लेकिन दुलारी ने रेशमी साड़ियां जो एकदम नई थी, इतनी नई जिनकी तह भी नहीं खुली थी, उसे जलाने के लिए फेंक दिया, है ना। वो भी दिखाता है कि उसका भी देश के लिए कितना बड़ा योगदान रहा है। भले ही वो गायिका थी, नाचती गाती थी, लेकिन देश से प्यार करती थी। और इसी तरह कई प्रसंगों को दिखाते हुए लेखक ने यह समझाया है कि भारत की लड़ाई में हर वर्ग अपना योगदान देना चाहता था और दिया था। चलिए प्रश्न दो देखिए, कठोर हृदय समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी। तो हम कहते हैं दुलारी जो थी वो कठोर हृदय समझी जाती थी, और साथ ही ये भी समझा जाता था कि वो तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन असल में अगर हम कहानी को सही से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि दुलारी का स्वभाव कैसा था, स्त्री की तरह बाहर से कठोर और अंदर से नरम, जैसे नारियल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही, बाहर से कठोर लेकिन अंदर से नरम। एक बात तो वो अकेली रहती थी, स्त्री थी, इसीलिए भी अपनी रक्षा के लिए उसको ऐसा कठोर व्यवहार, कठोर आचरण करना पड़ता था, लेकिन अंदर से वो बहुत ही नरम दिल की और प्यारी महिला थी। टुन्नू को दुलारी से प्रेम हो गया था, उसके लिए उसके हृदय में एक विशेष जगह थी, लेकिन जो दुलारी बाई थी वो टुन्नू को हमेशा दुत्कारती रहती थी। क्यों? क्योंकि टुन्नू उससे उम्र में छोटा था और उसे पहले लगता था कि शायद ये मजाक है या इसको अभी सच में नहीं पता ये क्या महसूस कर रहा है। दूसरा, उसे कहीं ना कहीं समाज की उपेक्षा का भी डर था कि लोग इसे और मुझे क्या कहेंगे। अब बाद में उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि टुन्नू जो है वो शरीर का प्रेमी नहीं है, बल्कि वो कला का प्रेमी है, आत्मा का प्रेमी है। और जब उसे टुन्नू की मृत्यु का समाचार मिला तो उसका हृदय जो था वो दर्द से बहुत दुखने लगा, उससे आंखों में आंसू आने लगे, उसे अपना जो प्यार जो उसने छुपा के रखा था टुन्नू का वो बाहर आने लगा, क्योंकि उसे पता था कि मन ही मन में उसके दिल में भी एक जगह है टुन्नू के लिए, है ना। तो उसका जो कभी ना पिघलने वाला दिल था वो आज पिघल चुका था। और इसी वजह से जब उसे टुन्नू की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वो अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए उसी के द्वारा दी हुई जो खद्दर की साड़ी थी, खादी की साड़ी, उसे वो पहन लेती है। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 देखते हैं, कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा? कुछ और परंपरागत लोक आयोजनों का उल्लेख कीजिए। उस समय ऐसे आयोजन क्यों होते थे? क्योंकि मनोरंजन के बस यही साधन थे, है ना। ये टीवी, फोन, रेडियो इतने नहीं चलते थे उस समय, और फिर भी लोगों का जो सम्मान था, प्रतिष्ठा था, वो ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ था। जो कजली गायक थे वो लोग उन्हें बुलवाते थे अपने मनोरंजन के लिए, उनसे गाना गवाते थे, नचाते थे, इसलिए उनके प्रतिष्ठा को नीचा माना जाता था, पर मनोरंजन का साधन भी उसे ही माना जाता था। भारत में तो कई स्थानों पे ऐसे बहुत से समारोह होते थे, है ना। जैसे उत्तर भारत में अगर आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश और इधर पंजाब हरियाणा की तरफ कुश्ती और पहलवानी का आयोजन बहुत उत्साह के साथ होता था, है ना। उत्तर भारत में कुश्ती या पहलवानी का आयोजन बहुत उत्साह के साथ होता था। राजस्थान पंजाब में फिर लोक संगीत गाते थे, पशु मेलों का आयोजन, जैसे बिहार का एक पशु मेला बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, और लोक नृत्य गाए जाते थे, लोक संगीत गाए जाते थे। दक्षिण क्षेत्र में अगर हम जाएंगे भारत के, तो वहां पे हाथी के युद्ध करवाए जाते थे, बैलों के युद्ध करवाए जाते थे, और इसी तरह से कई चीजें हमारे देश में यहाँ वहाँ मनोरंजन के लिए की जाती थी। जैसे नौटंकी की जाती थी, लोक गान गाए जाते थे, लोक गीत गा के उनपे नृत्य किया जाता था, जिसे लोक नृत्य कहते हैं, है ना। बैलों को, हाथियों को लड़वाया जाता था, मेलों का आयोजन होता था, पशु मेलों का आयोजन होता था, बहुत सी चीजें मनोरंजन के लिए की जाती थी। प्रश्न चार देखते हैं। दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है, फिर भी अति विशिष्ट है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे कि दुलारी को सामाजिक और सांस्कृतिक दायरे से बाहर माना जाता है, क्योंकि जो उनकी तरह लोग होते हैं जो नाचते या गाते हैं, समाज में उनको इज्जत या प्रतिष्ठा उतनी नहीं दी जाती है जितनी उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन उनका जो कला के प्रति प्रेम है, जो उनकी प्रतिभा है, उसको भी हमें सम्मान देना चाहिए। और जो दुलारी है, भले ही वो, क्योंकि हमारे जो हमने सामाजिक दायरे बना रखे हैं उनसे बाहर है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही विशिष्ट है। क्यों? क्योंकि उसने अपना खुद का नाम खुद बनाया है। उसको कौन था जो नहीं जानता था। ऊपर से उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है जो उसे सबसे अलग करता है। जैसे यहाँ पे उसकी हम कुछ विशेषताएं बात करते हैं, विशेषताएं लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे वो एक प्रभावशाली गायिका और नृत्यकी थी। जैसे दुलारी एक बहुत प्रभावशाली गायिका है, उसकी आवाज में इतनी लय है, मधुर है आवाज, कि कोई भी उसके गाने जब सुनता है तो वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। साथ ही पद्य में, यानी गाना गाते हुए, उसे प्रश्नोत्तर करना, सवाल जवाब करना भी आसानी से आता है। कोई भी बहुत बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा गायक भी उसका सामना करने में डरता था। और इसके साथ ही इतना अच्छा गाना गाने के साथ वो इतना अच्छा नृत्य भी करती थी। दूसरी उसकी विशेषता है समर्पित प्रेमिका। दुलारी जो थी वो समर्पित प्रेमिका भी थी। क्यों? क्योंकि मन ही मन में उसे टुन्नू के प्रति आकर्षण हुआ, फिर वो प्रेम में बदला। लेकिन जीते जी उसने भले ही प्रेम को व्यक्त ना किया, जब टुन्नू की मृत्यु हो गई तब उसके जो आंसू निकले उनमें वो प्रेम साफ दिखाई दे रहा था। साथ ही उसने जो साड़ी पहनी टुन्नू की दी हुई, उसमें भी उसका प्रेम परिलक्षित हो रहा था। तीसरी विशेषता देश के प्रति उसका समर्पण है ना। जैसे दुलारी को हम कह सकते हैं उसने किसी आंदोलन में या जुलूस में प्रत्यक्ष रूप से भाग भले ही ना लिया हो, लेकिन वो फिर भी देश के प्रति समर्पित थी। उसे देश की आजादी से बहुत ही प्यार था। क्यों? क्योंकि उसने बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के, जो फेकू ने उसे रेशमी साड़ियां दी, वो उसने जलाने के लिए आंदोलनकारियों के पास फेंक दी कि उसे ये साड़ियां, विदेशी साड़ियां नहीं चाहिए। और इसी में हम उसकी निडरता भी देख सकते हैं कि वो निडर भी थी, किसी से भी नहीं डरती थी, अकेली भले ही रहती थी, लेकिन उसे अपना पता था कि कैसे रहना है, अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, उसे सब पता था, और इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए वो निडर बन गई थी। इसी निडरता से उसने फेकू की दी हुई साड़ियां भी जुलूस में फेंक दी, और टुन्नू की मृत्यु के बाद भी अंग्रेज विरोधी समारोह जो था उसमें नाची गाई सब कुछ किया निडरता से, कि मुझे किसी से कोई डर नहीं है। और एक और उसकी हम विशेषता लिखेंगे कि वो स्वाभिमानी भी थी, है ना। अपने सम्मान से समझौता बिल्कुल नहीं कर सकती थी। अकेले रह सकती थी लेकिन सम्मान से समझौता नहीं कर सकती थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पांच पे आते हैं। दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ? तो हम लिखेंगे खोजवा बाजार में भादो के महीने में तीज के अवसर पे एक समारोह आयोजित किया गया था, है ना। वहां पे खोजवा बाजार वालों ने दुलारी को अपनी ओर से गाने के लिए बुलाया था और वहीं पे बजरडीहा वालों लोगों ने टुन्नू को बुलाया था अपनी तरफ से गाने के लिए। तो उन दोनों ने जब आपस में ये गाने शुरू किए, पद्य में सवाल जवाब करने शुरू किए, तो एक दूसरे को जो देख के उनके आंखों में आकर्षण पैदा हुआ, प्रेम पैदा हुआ, यही उनकी पहली मुलाकात थी। जब वो नवयुवक जो था टुन्नू, वो इतने उत्साह के साथ गाना गा रहा था, चुनौतियां दे रहा था, तो दुलारी जो हमेशा गुस्से में रहती थी उस समय मुस्कुरा रही थी और मंत्रमुग्ध होकर उसे सुन रही थी। और वो दुलारी जो थी उसने टुन्नू को मन ही मन नतमस्तक होके प्रणाम कर लिया था। वो ऐसी उनकी फिर पहली मुलाकात थी। प्रश्न 6 देखिए, दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहां तक उचित था? तय सरबउला बोल जिंदगी में कब देख ले लोट। दुलारी से इस आक्षेप में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो दुलारी का पहली बात तो टुन्नू को यह कहना उचित था, क्यों? क्योंकि टुन्नू जो है वो अभी मात्र 16-17 वर्ष का एक बालक है। उसके जो पिताजी हैं वो पुरोहित हैं, पंडित जी हैं, जो मुश्किल से यहाँ वहाँ पूजा पाठ करवा के थोड़े से रुपए कमा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, है ना। तो टुन्नू ने अब तक लोट यानी नोट नहीं देखे हैं और उसको नहीं पता है कि कैसे थोड़े थोड़े रुपयों की कीमत होती है, कैसे इनको जोड़ा जाता है, फिर कैसे गृहस्थी चलाई जाती है। तो टुन्नू के द्वारा दुलारी यहाँ पे असल में आक्षेप कैसे लोगों पे कर रही है, जो लोग जिंदगी में कुछ करते नहीं है लेकिन दूसरों की नकल पर आश्रित होते हैं, है ना, कि ये ऐसा कर रहा है, इसे पैसे मिल रहे हैं तो चलो हम भी ऐसे करते हैं, बल्कि वो खुद के पैरों पे खड़ा नहीं होना चाहते हैं। इसीलिए दुलारी ने ये जो बात कही है वो यहाँ के जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए भी बहुत ही जरूरी हो जाती है। उनको भी ये चीज समझनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि आपको सशक्त बनाए, आपको मेहनती बनाए, आपको अपने पैरों पे खड़ा कर दे, आपको एक नई पहचान दे। तो ये इसमें एक संदेश भी छुपा हुआ है। प्रश्न 7 देखिए, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया? तो पहले टुन्नू की बात करते हैं। जैसे जो जुलूस निकल रहे थे, हड़तालें हो रही थी, उस एक टुन्नू ने भी एक जुलूस में भाग लिया था। साथ ही अब वो रेशमी कुर्ता नहीं पहनता था बल्कि खादी के वस्त्र पहनता था, है ना, गांधी टोपी लगाता था और जुलूसों में, आंदोलनों में भाग लेता रहता था। ऐसे ही एक आंदोलन में भाग लेते हुए आखिरकार टाउन हॉल में उसे अपने प्राण भी गंवाने पड़े थे, है ना, उसको प्राण गंवाने पड़े। और वहीं दुलारी बाई की बात करें तो उसका योगदान कैसे दिखता है, जो उसने अपनी रेशमी साड़ियां थी, नई साड़ियां थी, उसे तुरंत फेंक दिया था। जो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए आंदोलन चल रहा था, जो लोग घूम रहे थे वहां पे चादर लेके कि इसमें अपने विदेशी वस्त्रों को फेंकी, हम चला देंगे, हम सिर्फ स्वदेशी चीजें पहनेंगे, उसी में अपने नए कपड़ों को जो जिस बेबाकी से दुलारी बाई ने फेंक दिया था, वहां उसका अप्रत्यक्ष रूप से देश के प्रति प्रेम और योगदान भी इस लड़ाई में दिखता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं अब हम। प्रश्न 8, दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी, यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है? तो देखिए, कहानी पढ़ के ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि जो टुन्नू और दुलारी के दिल में एक दूसरे के प्रति प्रेम और आकर्षण पैदा हुआ था, ये कला के माध्यम से ही आया था, है ना, क्योंकि दोनों एक ही तरह के कलाकार थे, गाने के द्वारा ही वो मिले थे, अपने दोनों ने एक दूसरे के गाने की इज्जत की थी और फिर उसी वजह से दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम पैदा हुआ था। लेकिन दुलारी जो थी उसने टुन्नू के प्रेम को कभी स्वीकार नहीं किया था, भले ही वो मन ही मन उससे प्रेम करती थी, उसके दिल में भी उसके लिए खास जगह थी, लेकिन फिर भी उसने टुन्नू के प्रेम को स्वीकार नहीं किया था। और मन ही मन उसे प्रेम क्यों हो गया था, क्योंकि उसे पता था कि टुन्नू का जो प्रेम है वो शरीर की वजह से नहीं है, उसे शरीर का कोई लालच नहीं है, बल्कि ये प्रेम आत्मा से जुड़ा था, कला से जुड़ा हुआ था। और इसी बात को सोचकर दुलारी के मन में टुन्नू के प्रति एक आदर और प्रेम और दया का भाव, श्रद्धा का भाव अक्सर आ जाता था। लेकिन जब टुन्नू की मृत्यु का समाचार दुलारी को मिलता है तो उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, वो दर्द उसके लिए असहनीय हो जाता है। तो जो उसका अंदर का कलाकार है ना, वो और जाग जाता है और वो वहां पे जाती है जहाँ स्वतंत्रता सेनानियों ने एक समारोह आयोजित किया है, वहां पे जानबूझ के गाना गाती है और देश प्रेम का मार्ग चुनती है कि अब मैं अपने देश के लिए ही जीऊंगी, क्योंकि उसकी टुन्नू की मौत उसे और भी प्रभावित करती है कि देश के लिए जान देना कितनी गर्व की बात है। प्रश्न 9 पे आते हैं। जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों का फेंका जाना उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है? तो देखिए, आजादी के लिए एक आंदोलन चल रहा था जिसमें कुछ लोग टोली निकाल के घूम रहे थे और विदेशी कपड़ों का, विदेशी वस्त्रों का संग्रह कर रहे थे कि अपने आप विदेशी कपड़े हमें दे दीजिए, हम जला देंगे, हम हर चीज अब स्वदेशी अपने देश की ही इस्तेमाल करेंगे। और जब वो घूम रहे थे ना, तो हर कोई उन्हें वस्त्र भी फेंक फेंक के घर में से दे रहा था, लेकिन वो या तो फटे हुए कपड़े थे या पुराने कपड़े थे या जो इस्तेमाल में नहीं थे। लेकिन दुलारी ने जो कपड़े फेंके वो बिल्कुल नए थे, इतने नए कि उनकी तह भी नहीं खुली थी। तो ये जो दुलारी ने इस विदेशी वस्त्रों के ढेर में अपनी रेशमी साड़ियों को फेंक दिया, ये क्या दिखाता है? पहली बात तो उसके देश के प्रति जो प्यार है, जो सम्मान है उसके मन में, उसकी उस भावना को दिखाता है। दिखाता है वो सच्ची भारतीय है, सच्ची हिंदुस्तानी है। देश के आगे ये साड़ियां, ये कपड़े उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखते थे। उसके दिल में रेशमी साड़ियों के प्रति कोई मोह नहीं था। मोह था तो सिर्फ इस चीज का कि उसके देश का सम्मान बचा रहे, देश का गौरव बचा रहे। यानी इस सारे घटनाक्रम से हमें दुलारी बाई के सच्चे देश प्रेमी होने के बारे में पता चलता है। ठीक है, प्रश्न 10 देखिए। मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। टुन्नू के इस कथन में उसका दुलारी के प्रति किशोरी जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा? तो देखिए, टुन्नू जो था वो दुलारी से प्रेम करता था। यह प्रेम तभी विकसित हो गया था जब उसने दुलारी बाई को पहली बार देखा था, लेकिन वह दुलारी से उम्र में छोटा था, वो केवल एक 16-17 साल का लड़का था। दुलारी जो थी वो उसके प्रेम को उसकी उम्र की नादानी समझती थी, एक मजाक समझती थी, सही से नहीं समझती थी, इसलिए वो हमेशा उसका तिरस्कार करती थी, उसे दुत्कारती थी। लेकिन जैसे ही टुन्नू ने ये वाक्य कहा कि मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता, तो इन वाक्यों को सुनकर दुलारी को यह एहसास हो गया कि जो लड़का है इसके प्रेम में सच्ची भावना है। ये किसी के शरीर से प्यार नहीं करता, किसी के शरीर के लालच की वजह से इसे प्यार नहीं, इसे आत्मा से प्यार है, मेरी कला से प्यार है। तो ये देखकर जो दुलारी थी वो भी कहीं ना कहीं पिघल जाती है, उसके मन में श्रद्धा का भाव, प्यार का भाव, एक सम्मान का भाव आ जाता है टुन्नू के प्रति। और अब जो टुन्नू की जगह थी उसके दिल में, वो और भी गहरी हो जाती है। पहले से ही वो भी टुन्नू के प्रति आकर्षित थी, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में जगह थी, लेकिन ये सब सुनने के बाद ये जगह और भी पक्की हो जाती है। लेकिन जब टुन्नू के प्रेम को दुलारी स्वीकार नहीं करती, तो टुन्नू जो है वो अपने विवेक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए प्रेम को श्रद्धा का स्थान दे देता है, और अब कोई स्थान वो व्यक्ति नहीं ले सकते। यानी अगर दुलारी बाई उसके प्रेम को स्वीकार नहीं करेगी तो वो फिर किसी और व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता। अब वो अपने आप को देश प्रेम से जोड़ लेता है ना, वो सोचता है कि सिर्फ देश के लिए अब वो जिएगा और देश के लिए ही मरेगा, क्योंकि दुलारी नहीं तो कोई भी नहीं। अगला देखिए, अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा का प्रतीकार्थ समझाइए। तो पहला तो ये जान लेंगे कि ये जो पंक्तियां दी है इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि मेरे नाक की नथनी या लौंग जो है वो खो गई है, अब मैं किससे पूछूं। ठीक है, तो नाक में जो गहना पहना जाता है ना, जिसे हम नथनी या फिर लौंग भी कहते हैं, नथ कहते हैं, ये किसका प्रतीक होता है? सुहाग का। और दुलारी जो थी वो गाने वाली थी, उसकी कोई शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसने अपने आप को किसकी सुहागिन मान लिया? मन ही मन टुन्नू की। वो ये मानती थी कि मेरे मन में जो ये नथ है, जो गहने हैं, वो टुन्नू के नाम के हैं। इसीलिए दुलारी ने जब वो मृत्यु की खबर सुनी थी और उसी जगह पे उसे नाचने गाने के लिए बुलावा भेजा गया, तो उसने ये गाना इसीलिए गाया क्योंकि वो ये दिखाना चाह रही थी कि इसी स्थान पर मेरा जो प्रेमी है वो मुझसे बिछड़ गया है। लॉन्ग हो गई है, यानी मेरा जो सुहाग है, मेरा प्रेमी है, वो बिछड़ गया है। अब मैं उसके बारे में किससे पूछूं, वो मुझे कहाँ मिलेगा? वो मुझसे बिछड़ गया है, उसको पा लेना अब मेरे बस में नहीं है। मैं किससे पूछूं, मुझे पूछते हुए शर्म भी आ रही है, लेकिन मुझे जानना है मेरा प्रेमी जो मुझसे बिछड़ा है वो अब कहाँ है। और इसमें उसका जो दुख है वो साफ साफ झलकता है। तो इसीलिए ये जो शीर्षक है कहानी का, ये बहुत ही सटीक रखा गया है, क्योंकि आखिर में पूरी कहानी इसी के आसपास आ जाती है कि मेरे नाक की जो नथ खो गई है, यानी मेरा जो प्रेमी मुझसे बिछड़ गया है, वो मुझे कैसे मिलेगा, किससे पूछूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे के सारे प्रश्न पूरे होते हैं और आपका पाठ भी पूरा होता है। अब हम मिलेंगे अगले ऑडियो में अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।